ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಆಜ ಆಪ್ಕೆ ಭಾಗವತ್ ಕಕ್ಷಾ ಕೆ ಕ್ರಮ ಮೇ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕಿ ಕಕ್ಷಾ ಹೈ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕೆ ಅಭಿ ಜೋ ಪ್ರಸಂಗ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೇ ನಿತ್ಯಂತ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೂಂ ಫಿರ್ ಭಿ ಆಪ್ಕೆ ಪ್ರಥಾ ಮಂಟನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕುಛ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ತೋ ಏಕ್ ಭಜನ್ ಗಾಯೆ ಚಲೇಗಾ ಮೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಫಿ ಮಾಂಗ್ ಲೇತಾ ಮೈ ಗಾನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಹೂಂ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಕುಛ ಮೇರೆ ಸುನ್ನೆ राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तब अकारणे गेला जानते हैं कोई नहीं आप लोग का पास तकता ना निकाल राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधा भजने जदि मति नहीं भेला कृष्ण भजन तब अकारणे गेला कृष्ण भजन तब अकारणे गेला राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधा भजने आत परहित सूरज नहीं मानी आत परहित सूरज नहीं जानी राधा वर्यहित माधव नहीं जानी राधा विरहित माधव नहीं जानी केवल माधव पूजय सो ज्ञानी केवल माधव पूजय सो ज्ञानी राधा अनादर करई अभिमानी राधा अनादर करई अभिमानी कृष्ण भजन तब अकारण भेला राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधा कबहि नाही करवि ताकर संग कबहि न करवि ताकर संग चित्ते छसि जदि ब्रजरस रंग चित्ते छसि जदि ब्रजरस रंग राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधा भजने जदि कृष्ण भजन तब अकारण गेला कृष्ण भजन राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधिका दासी जदि है अभिमान राधिका दासी जदि है अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल गान शीघ्र मिलाई तब ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद रज पूजय मानी राधिका पद रज पूजय मानी राधा भजने जदि मति नहीं भेला राधा भजने जदि कृष्ण भजन तब अक
करण गेला कृष्ण भजन तब राधा भजन जदि मती नहीं गेला कुमार मा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी उमर मा सत्या सची चंद्र रुक्मिणी राधा अवतर आमनाय वाणी राधा अवतर आमनाय वाणी राधा भजने जदि मती कृष्ण भजन तब अकरण गेला कृष्ण भजन तब राधा भजन जदि मती नहीं गेला हे न राधा परिचर्या जा कर धन हे न राधा परिचर्या कर भक्ति विनोद सर मागे चरण भक्ति विनोद सर मागे चरण राधा भजने जदि मती नहीं बेला राधा भजने जदि मती नहीं बेला कृष्ण भजन तब अकारण गेला कृष्ण भजन तब अकारण गेला राधा भजन जदि मती नहीं बेला राधा भजन जदि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
शायद आप पहली बार सुन रहे मुझे लगता है कोई पीछे गा नहीं सके तो इस भजन का अर्थ जानना चाहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखते हैं राधा भजने जदि मती नहीं भेला कृष्ण भजन तब अकारणे गेला श्री कृष्ण का भजन करते हुए भी यदि श्री राधिका जी की भजन में मती नहीं लगा तो समझे कि कृष्ण का भजन व्यर्थ हो गया। आया समझ में? अगर केवल कृष्ण का भजन करते हैं मन लगा करके और राधा रानी के भजन नहीं कर पाए तब क्या होगा? कृष्ण के भजन बेकार जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आत्म रहित सूरज नहीं जानी राधा विरहित माधव नहीं मानी। समझ में आ जाता होगा, आत्म जानते ना गर्मी, सूरज है उसमें गर्मी नहीं होता तो कोई सूरज मानेगा उसको? ठंडा ठंडा लगे सूरज, लाइट भी निकले ठंडा चंद्रमा होगा, सूरज थोड़ी होगा। आतप के बिना, गर्मी के बिना सूरज को कोई मानेगा सूरज करके? इज इट पॉसिबल? नो। तो इसी प्रकार आतप रहित सूरज नहीं जानी, सूरज को कोई जानता नहीं, आतप के बिना सूरज कैसे हो सकता? ठीक इसी प्रकार राधा विरहित माधव नहीं मानी, राधा के बिना माधव को माना नहीं जा सकता कि माधव है करके, ना मान नहीं जा सकता। केवल माधव पूजयसु अज्ञानी, बोलते हैं जो केवल माधव को पूजा करते हैं, केवल कृष्ण को पूजा करते हैं, वो कैसे हैं? अज्ञानी है। विजयसु अज्ञानी राधा अनादर करई अभिमानी, जो राधा रानी के अनादर करते हैं वो किसे हैं? अभिमानी है। कब ही नाही करीब ताकर संग चित्ते इच्छसी जदि ब्रज रस रंग। बोलते हैं कि अगर आप सचमुच ब्रज की रस को आशा करते हैं, चित्त में ब्रजरस पाने के लिए अगर इच्छा है, ब्रजरस क्या है जानते ना, वृंदावन की भाव को, ब्रजेंद्र नंदन की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, नंदन नंदन की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके हृदय में ऐसे विचार है तो कभी भी उन लोगों का संग नहीं करना। कब ही ना ही करीब ताकर संग, उनका संग नहीं करना अगर आपका मन में ब्रजभाव ब्रजेंद्र नंदन की कृपा पाने की इच्छा हो तो। किनका संग नहीं करेगा? ना जिन लोग राधा रानी को अनादर करते हैं और केवल कृष्ण को मानते हैं, उनका संग कभी नहीं करना। अगर करेंगे तो आपके हृदय में ब्रजभाव लुप्त हो जाए, फिर नहीं पाएंगे। राधिका दासी यदि हय अभिमान शीघ्र मिलई तब गोकुल कान। अगर आपका मन में राधा रानी का दासी के भाव आ जाए तो जल्दी से गोकुल के कान्हा मिल जाएंगे आपको। बोलते ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी। ब्रह्मा शिव नारद, श्रुति मतलब वैदिक ज्ञान, नारायणी, ये सब क्या करते हैं? राधिका पद रज पूजय मानी, राधिक के चरण रज को बहुत मान करके जान करके बड़े सतर्कता से पूजा करते हैं। सब ब्रह्मा शिव श्रुति नारायणी सब पूजा करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी, जितने सारे देवियों का नाम आ गया। उमा जानते कौन है? पार्वती। रमा लक्ष्मी जी। सत्या कृष्ण की वटमहिषी। सची इंद्र की। चंद्रा रुक्मिणी, ये सब कुछ साधारण तो नहीं है ना, सब पोस्ट पोजिशन वाले हैं ना, ये सभी राधा अवतार आमनाय वाणी। आमनाय मतलब वैदिक शास्त्र कहते हैं सब राधा के एक्सपांशन है, ये सब अपनापन किसी का नहीं है, सब एक्सटेंशन काउंटर है। हेड ऑफिस कौन सा है? राधा ने। ये सब एक्सटेंशन काउंटर, उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी सब एक्सटेंशन काउंटर, हेड ऑफिस तो राधा ने। हे न राधा परिचर्या जाकर धन, इस प्रकार राधा रानी का परिचर्या जिसका धन है, भक्ति विनोद तारा मागे चरण, भक्ति विनोद उनके चरण को आशा करते। इस प्रकार अभी आप समझते होंगे हमारा जो गौड़ीय परंपरा है इसी के क्या विशेषत्व है। यद्यपि हमारा जो चार संप्रदाय है, चार संप्रदाय जानते हैं क्या क्या है? जो प्रामाणिक कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण के दासत्व को प्राप्त करने के लिए, कृष्णा के सेवा भाव को प्राप्त करने के लिए चार प्रामाणिक परंपरा है जिसके द्वारा हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिसके होकर चार प्रामाणिक परंपरा क्या क्या जानते हैं? एक एक करके कोई बोलेंगे तो एक बोलिए जी। रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? उसका आचार्य कौन है? प्रवर्तन आचार्य कौन है? देखिए जब रुद्र संप्रदाय कहते हैं तो उनका नाम रुद्र से ही होता है। रुद्र मतलब भगवान शिव है। भगवान को जानने वाले में एक अन्यतम कौन है? भगवान शंकर है, जो भगवान को ठीक ठीक से जानते हैं, इसलिए कहते हैं ना वैष्णवानाम यथा शंभु। शंभु ही भगवान को जानते हैं, वही तो उनके एक्सपेंशन है, उनके भी एक्सपेंशन काउंटर वही है, उनके हेड ऑफिस भी वही है। तो इसलिए वो जानते हैं अपने प्रभु के महिमा, वो प्रचार करते हैं। ये जो शैव संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय नहीं है, वो डुप्लीकेट संप्रदाय है। भगवान शंकर जो प्रचार करते हैं सचमुच भगवान कृष्ण की महिमा प्रचार करते हैं। ये रुद्र संप्रदाय, भगवान रुद्र, भगवान शंकर, उन्होंने भगवान को जानते हैं तत्वतः, तो उन्होंने एक संप्रदाय शुरू किया अपने से, उसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। उन्हीं के जो प्रवर्तन आचार्य उन्होंने जो शिक्षा दिए रुद्र ने, भगवान शंकर ने जो शिक्षा दिए उसको धारण करके जो पृथ्वी में धरातल प्रचार किया वो आचार्य का नाम है श्री विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने भगवान शंकर के इस तत्व को वो प्राप्त किए और उसको प्रचार किए, तो इसलिए उनको नाम दिया कि रुद्र संप्रदाय, क्योंकि रुद्र ने जो भगवान के बारे में मुझे ज्ञान दिया वही ज्ञान में प्रचार करता हूं। वो ज्ञान सही है क्योंकि भगवान के बिल्कुल राइट हैंड है, वो जानते हैं भगवान, वही बताए, तो इसी को विष्णु स्वामी ने प्रचार किए, है ना। विष्णु स्वामी संप्रदाय में आगे चल करके आचार्य हुए, अब जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनका नाम है वल्लभाचार्य, है ना। उनका महामंत्र है श्री कृष्ण शरणं मम, क्या है सुने है ना, वो हमेशा जप करते, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ये महामंत्र कौन दिया? भगवान शंकर दिए, ये उनकी संप्रदाय उनकी दिया हुआ महामंत्र है। भगवान शिव ने ये महामंत्र दिए, क्या दिए? श्री कृष्ण शरणं मम, मेरा श्री कृष्ण ही शरण है, मैं उन्हीं के शरण में हूं। ये हमेशा भगवान शंकर जप करते हैं, ये उनका परंपरा चला रखा है, उनका संप्रदाय है। तो अभी भी वो संप्रदाय संप्रदाय में जितने आप जाएंगे, अगर आप नाथ द्वारा नाम सुने हैं, नाथ जी बहुत बड़े हैं, तो उन लोग को वही जप करते हैं, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। उनका दीक्षा होता है ब्रह्म संबंध, ब्रह्म से संबंध कर दिया जाता है तो मंत्र देते हैं श्री कृष्ण शरण मम, इसी भी जप करना, जैसे हम हर कृष्ण मंत्र देते हैं उसी भी जप करना। तो एक संप्रदाय प्रामाणिक है रुद्र संप्रदाय, दूसरा कुमार संप्रदाय। कुमार जो चार कुमार है, ब्रह्मा जी के सबसे फर्स्ट ब्याज के लड़के हैं, पहले ब्रह्मा जी ने उन्हीं को सृष्टि किए थे। और मैं बताया था यह हमारा वैदिक साहित्य का रेकर्ड है, यह हमारा हिस्ट्री है, प्रूव कोई कर सकते हैं, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव है ना, नहीं प्रथम जीव है। और उनके जो फास्ट ब्याज के प्रथम पुत्र हुए, ब्रह्मा जी ने फास्ट पिता का पुष्ट पाए, प्रथम पिता का प्रथम ब्याज का प्रथम पुत्र, और पिताजी के प्रथम आदेश को अमान्य कर दिए, ये रेकर्ड है। तो इसलिए कोई बोलेगा पिताजी की बात नहीं माने, बोलेंगे वो रेकर्ड है, क्या बात कर रहे हैं, ये हम गलती थोड़ी कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स, है ना, एविडेंस दिखा सकते। लेकिन किस बात को मान्य किए, पिताजी के कौन सी बात को फर्स्ट, वो बोले कि भाई आप गृहस्थी बनो, बोले हम नहीं मानेंगे, अगर पिताजी माताजी को फोर्स करते हुए शादी करो आप ना कर दें तो आपका हमें कोई आईन सम्मत अधिक ये नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि का वही एविडेंस है, सबसे फास्ट पिता को फास्ट ब्याज के पुत्र ने फास्ट ऑर्डर को डिफाई किया थी कि हम शादी नहीं करेंगे, वो पिताजी युक्ति करके गुस्सा होकर के मान के कर नहीं पाए, बोले ठीक है हार गए केस में, हार गए थे, ऐसा नहीं कि उन केस चला था लेकिन हार गए। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं, अगर ये बात को अमान्य करते हैं तो आपके फेवर है। तो वो कुमारों ने क्यों नहीं माने, क्यों नहीं किए, क्योंकि बोले कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम क्यों फंसाते हैं समझा। तो उन्होंने भजन किए थे और जन्म से ही ब्रह्मा के प्रति उनका मन था, ब्रह्मभूत थे। जो ब्रह्मभूत होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, किसने मुझे पूछ रहा था, दो प्रकार के भूत हैं, हम तो तीन चार प्रकार के भूत जानते हैं, है ना, नहीं लेकिन शास्त्र में दो प्रकार के भूत हैं, एक तो जीव भूत एक ब्रह्म भूत। भगवान गीता में कहता ना, मामि वंश जीव लोके जीव भूता, एक जीव भूत है, और गीता में अन्य जगह में कहते हैं वो ब्रह्म भूत है। दो भूत के बारे में जानते ना, नहीं एक तो हम लोग कौन सा भूत है, ये तो पता है जीव भूत है, ब्रह्म भूत हुए नहीं, दोनों तो भूत है, वो कैसे है उनका लक्षण से पता चलेगा, क्या क्या लक्षण है दोनों भूतों का, पहले अपना बारे बताएं। जीव भूतों का, जीव भूतों का लक्षण है, भगवान कहते हैं भगवत वाक्य है, मन षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये लक्षण है, क्या है, हमारा जो छह इंद्रियां है मन को साथ में लेकर के घोर प्रयास कर रहा संग्राम कर सा है। मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति ही प्रकृति के साथ कर सती कर्षण करता लगा है निचोड़ करके मुझे सुखी होना है मुझे जीना है मुझे रहना है मुझे मरना नहीं है मरोगे मुझे सुखी होना है सुखी हो नहीं सकता लगे हैं मन के साथ इंद्रियों को लगा करके इतने जन्म जन्म तो लगे हैं। ये लक्षण किसका है? जीव भूत जो मन के साथ अपने इंद्रियों के साथ शरीर को लगा करके रगड़ करके लगे हैं जो पॉसिबल नहीं है कभी संभव नहीं है सुखी होना कभी संभव नहीं हमेशा जी के रहना लेकिन इनके पीछे पड़े पड़े ना नहीं तो इसी को भगवान को मामे वंशो जीवल के मेरे अंश हैं मम एव अंश लेकिन जीव लोक में जीवभूत सनातन सनातन इटरनली दे आर ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग है ना ये छोटे बच्चे से लेकर के आप जितने बैठे हैं बूढ़े बूढ़े हम जैसे नालायक सभी को पता है कि हम मरेंगे है ना कभी कह सकते नहीं मैं जी लूंगा अरे मरना तो बाकी है ये अपना शरीर में जो है दांत आंख बाल ये सभी होते होते जिंदे होते होते छोड़ जाते हैं हम और बात नहीं मानते है ना अभी तक दुनिया में कोई है जो जन्म लेकर के मरा नहीं एक उदाहरण है हम आए इस ये लोक का नाम क्या है भाई मूर्ति लोक में हर काम क्या होता होगा एक ही तो काम होता है यहां एजेंडा एक ही है नथिंग क्या है काम क्या होता है मरना मरने के लिए आते हैं मूर्ति लोक है बाथरूम में कोई जाते हैं किस लिए जाते हैं क्या काम होता है वहां नहाने के लिए जाते हैं तो इस मूर्ति लोक में आए बचने के लिए लेकिन दुख की बात हम क्या चाहते हैं जीना चाहते अरे भाई तू जीना चाहते तो मरने के स्थान पर क्यों आए रंग एड्रेस है ना तू जो चाहता है तू यहां पर क्यों आए तू जीना चाहता है मृत्यु लोक में आ गया और खाली जीना थोड़ी चाहते हैं हम क्या चाहते हैं सुखी होकर जीना चाहते हैं लेकिन ये लोक का दूसरी नाम क्या है दुखालय यहां दुख मिल सुख मिल ही नहीं सकता सुख है ही नहीं यहां व्यवस्था सुख का व्यवस्था यहां है नहीं लेकिन हम चाहते हैं क्या ये हमारा बेवकूफ भी नहीं है तू सुख चाहता है तो दुख का लय में क्यों आया तो इसीलिए हम लेकिन फिर भी अच्छी तरह से जानते हैं हो ही नहीं सकता लेकिन फिर भी रगड़ करके लगे हैं मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति कर्षण में लगे हुए हैं मन के साथ इंद्रिय के साथ मैं सुखी हो जाऊंगा मैं जी जाऊंगा अरे भाई इम्पॉसिबल नहीं ट्रायल कर लू डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं इतने लाख रुपया दे दूंगा दो चार वो सलाइन चढ़ा दो वो तार चढ़ा दो मैं थोड़ा जी जाऊं अरे वो डॉक्टर भी मरेगा वो नर्स भी मरेगी तुम भी मरोगे तुम भी जला कह सकते हैं लेकिन फिर भी वो क्या करें आशा वैतरणी नदी छोड़ते नहीं हम ये तो है जीव भूतों के लक्षण समझ आ गया ना ये भूत और दूसरे भूत होते हैं ब्रह्मभूत उनका लक्षण ही भगवान बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सबसे पहला लक्षण क्या उनका है खुश हा प्रसन्न रहे प्रसन्न समझते हैं किसी बोलते हैं ये तो पता लगता है ना हम डुप्लीकेट प्रसन्न होने की प्रयास करते हैं हमेशा प्रसन्न आत्मा वो शरीर से प्रसन्न नहीं किसमें प्रसन्न होता है आत्मा जिसका प्रसन्न है हम लोग का सब कोशिश करते हैं किसी को बंधु बांधव मिल जाने से दान दिखाते हैं अंदर से रोते हैं और दान दिखाते हैं मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट में कोई तेज नहीं कुछ नहीं है डुप्लीकेट सारे लेकिन फिर भी इसी को हम प्रसन्न समझते हैं प्रसन्न नहीं है ये शरीर को प्रसन्न करने का प्रयास शरीर तो मरा हुआ है ये कहते हैं जो ब्रह्मभूत का उनका लक्षण क्या प्रसन्न होगा आत्मा प्रसन्न हो जाए ये शरीर तो एक कवर है कवर का अंदर जो समन है वो समन जब प्रसन्न हो जाए कवर को क्या पूछे है ना तो इसी कहते हैं कि ब्रह्मभूतों का आत्मा ही अंदर वाले जो समन वो प्रसन्न हो जाए प्रसन्न आत्मा अगर आत्मा प्रसन्न हो जाए तो उसका और दो लक्षण बताते क्या है ना सोचती ना कांखती सोचना मतलब शोक ना करे। हम शोक कब करते हैं? हम शोक करते हैं ना हमेशा ना? नहीं तो किसके लिए शोक करते हैं? नहीं, दुख होने से सुख के लिए प्रयास ही करते हैं, शोक नहीं करते हैं। अब बताइए सही, शोक हम कब करते हैं, किस लिए करते हैं? करेक्ट, जब समन खो जाता है तब। प्राप्त वस्तु अगर खो जाए, ऐसे तो कोई भिखारी है बेचारा, उनका आशा करता है 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया तक का आशा रहे उसका, मिल जाए उसे गुजार करता है, बाय चांस उसको 2 लाख रुपया मिल गया, वो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, ऐसे तो प्रैक्टिकली सोचा भी नहीं, मिल गया उनको तो कितने खुश होगा। अब अंदाजा लगा सकते कितने खुश होगा, प्राप्त वस्तु मिल गया उनको, अब रोकड़ा, अब इतने खुश हो गया, इतने खुश हो गया, अब घर में लेकर बटर के लाते जाते रास्ता में खो गया, तो जो दुख होगा वो सुख से कितना गुना ज्यादा होगा, है ना? नहीं, जितने सुख मिला था उससे कई गुना ज्यादा दुख होगा, इसलिए मिलना ही खराब है, क्योंकि मिल जाएगा रहेगा तो है नहीं हमारे पास, खो जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख होगा, तो इसी को बोलते हैं शोक। प्राप्त वस्तु जब खो जाए तो जो दुख होता है उसका नाम है शोक। याद करते करते बोलते बोलते रोएगा, हाय नहीं था नहीं था, मिल करके चला गया, हाथ में पकड़ा था गया यार, गिना था मैंने, पकड़ में रखा था तब गया, इतने शोक होगा, इसी बोलते हैं शोक। तो इसी प्रकार का शोक उनका नहीं होगा जिनका आत्मा प्रसन्न है, ये पहला लक्षण है उनका, न सोचती, और दूसरा न कांक्षती, कांक्षा मतलब आकांक्षा मतलब कोई इच्छा ही नहीं करेगा, नहीं चाहिए, अरे भाई लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ आशा ही नहीं करेगा, और जो है वो खो गया तब शोक नहीं करेगा। ये दोनों लक्षण जिसका है उनका आत्मा प्रसन्न होगा, ये 22 वर्ष जिनका आत्मा प्रसन्न है, ये दोनों सिम्टम उसका है, ये दोनों सिम्टम जिसके पास है समझो कि उनका आत्मा प्रसन्न है, और जो दोनों सिम्टम नहीं है मुस्कुराते हैं वो आत्मा प्रसन्न है, बड़ा दुखी है, समन दुखी है, बाहर में ढक्कन को चित्र बनाते हैं सुखी का, यही हम लोग सो वही है ना, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत कुछ, और जो खो जाते हैं बहुत दुखी होते हैं, तो कैसे सुखी हो सकता तुम्हें, असंभव है, आपका आत्मा प्रसन्न हो ही नहीं सकता। आत्मा प्रसन्न असली सचमुच अंदर से प्रसन्नता अनुभव होगा जब भी हम किसी भी वस्तु के लिए आशा नहीं करेंगे, और जो दुनिया चला जाए सब भी चला जाए खो जाए तब कभी दुखी नहीं होंगे, सुख नहीं, तब जाकर स्थिति है ब्रह्मभूत स्थिति, है ना? तुम कहां से आ गए? संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये कुमार संप्रदाय में ये जो कुमार गण थे ये शुरू से ही ब्रह्मभूत थे, ब्रह्मभूत थे, कोई आशा नहीं था, कोई शोक नहीं था, प्रसन्न आत्मा थे, लेकिन तभी भी कमी पड़ गया। देखिए ये भगवत भक्ति कुछ साधारण अड़िनारी चीज नहीं है, हम लोग तो ऐसे ही लेते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था में भी भगवान कहते हैं उसके बारे में कमी रह जाता क्या? न सोचती न कांक्षती ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा मद भक्ति लभते परम, तब जाकर के भगवान बोलते मेरा असली पराभक्ति की पाने के लिए योग्य बनता है। भगवान के पराभक्ति का क्वालिफिकेशन तब आएगा, अब हमारे तो सोच लीजिए हमारा पोजिशन कहां है, भगवान की असली प्रकृष्ट भक्ति का योग्यता कब होगा? जब हम ब्रह्मभूत हो जाएंगे, ये भूत छोड़ करके दूसरा भूत बनेंगे, जब तब जाकर भगवान की असली भक्ति कर पाएंगे। मद भक्ति लभते पराम, बोलते मेरे भक्ति को लाभ करेगा कौन सा भक्ति, हम तो भक्ति करते हैं 15 साल से, अरे ये तो भक्ति है, ये भक्ति नहीं, जो परम भक्ति है वो तभी प्राप्त करोगे, तभी स्टार्ट करोगे जब ब्रह्मभूत हो जाएंगे। अब ये भूत हो, ये भूत बनने से तब शुरू करो, है ना? तब भगवान की पराभक्ति शुरू होता है। तो कुमार गण जन्म से ब्रह्मभूत थे, लेकिन अब योग्यता आ गया था उनका, तब उन्होंने एक बार पिता इसी सुनसान करके बोले हम भी चलेंगे, अब बात बात बहुत करते वैकुंठ का थोड़ा दिखाते हैं, उनको तो ये सामर्थ्य था बिना रिजर्वेशन में बिना फ्लाइट बुकिंग में जहां मर्जी चले जाए। अब माया को पहचान लिए थे इसलिए कपड़ा भी नहीं पहनते थे, नंग धड़ंग 5 साल का लड़का बनकर रहते, सबसे पुराण पुरुष हैं, लेकिन आपने आपको साइज छोटा करके बिल्कुल ऐसे कर रखे थे, वो बच्चे हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, लेकिन आपने ऐसे करके रखे और घूमते रहते थे जहां मर्जी, कोई टिकट फेट कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं, मन किया मन के गति से चले जाते। तो मन करके पूरे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते एक बार उनके मन में आया, क्योंकि पिताजी से बात करते थे, सुने थे पिताजी बोले थे कि मेरे पिताजी ने मुझे बोले हैं आप सृष्टि करने के लिए आप मेरे साथ नहीं देते हैं, इसी करते झगड़ा में बात हुआ था, तो बोले पिताजी से बात करते थे, चल के देखते हैं हमारे नाना जी कैसा है, पिताजी के पिताजी को नाना जी बोलते ना, दादाजी ना, दादाजी से दादाजी को देखकर आते हैं, तो दादाजी को मिलने के लिए एक बार चल पड़े। तो उनका कोई पैसा तो खर्चा होता ही नहीं कि टिकट रिजर्वेशन करूं कहां करूं, मन क्या चल दिए कोई खर्चा नहीं, चल पड़े और जा करके वैकुंठ में, वैकुंठ तो बड़ा भारी है, सात सात गेट लगाया गया, बड़े बड़े मूछ वाले सिक्योरिटी हैं, यहां गए और वो बेचारे घूमने फिरने वाले कोई आईडी फाइडी किए नहीं थे, वहां चेकिंग हुआ, अब कपड़ा भी नहीं पहनते भाई, सृष्टि के सबसे बड़े अफसर के ऑफिस में जाते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने, यूनिफॉर्म नहीं, ऐसे ऐसे चले जाए, जान देगा कोई, और रोक दिए, वो पूछने के लिए भाई कोई है आपके कागजात कैसे जा रहे हैं क्या, इतने में छोटे छोटे बालक गुस्से में हो गए, गुस्से होकर उनको साफ दे दिए, आप एंट्री नहीं किए थे भगवान के धाम में, दादाजी के एंट्री नहीं कर पाए थे, गेट पर ही झगड़ा हुआ, गेट पर झगड़ा हुआ किसके साथ हुआ, सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ झगड़ा हो गया। आप लोग का कभी ऐसा होता है, कभी कोई जाने जाते हैं किसके घर में जाते हैं सिक्योरिटी के साथ, मंदिर में होता हो, बाकी के घर में तो नहीं होता, मंदिर में हमेशा विशेष करके फेस्टिवल के समय पर जब हम प्रसाद के कूपन लेकर भी आते हैं कि नहीं है, अरे हम ये हैं ये हैं वो हैं, सिक्योरिटी रोक देगा, तो सबसे बड़ा अपमान तो ही होता, अरे हम सुवर्ण सो मुझे यहाँ प्रसाद के हम गेट पर रोक दिया गया, सिक्योरिटी रोक दिया, अरे तू सिक्योरिटी कहाँ के, रेंटेड सिक्योरिटी है, हमको नहीं जानते है, तब तो हमारा पोस्ट पोजिशन लगा करके हम कितने अभिमान करेंगे कितने मान करेंगे। लेकिन जो सृष्टि के सबसे प्रथम कुमार गण है, जो अपने पिताजी को आर्गुमेंट में परास्त कर दिए थे, जन्म सिद्ध वक्त थे, भगवत ब्रह्मभूत थे, ना तो किनको प्रसाद खाने की इच्छा था, ना किसी को साथ में ले जाना था, ना कोई आशा भी करते थे, ऐसे स्थिति में चतुर कुमार जाते समय उनको भी चेकिंग में आना पड़ा, वो इतने गुस्से हो गए, इतने गुस्से हुए तो झगड़ा किए, झगड़ा में उनको गाली गलौज में छोटे छोटे है कुछ मारपीट तो नहीं करता, अभिशाप दे दिया उनको, वो तो सिक्योरिटी सशस्त्र वाहिनी थे, आप बोलेंगे आपका अस्त्र शस्त्र जाने दो, हम क्या कम समझ रहे, भाग वज्र है वाणी में बोले तुम असुर हो जा, वैकुंठ में कुंठा नहीं होता, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां कोई छानबीन नहीं है, वैकुंठपति भगवान का कोई पर अपर नहीं होता है, ना तन का कोई शत्रु मित्र हिंसा देश कुछ होता ही नहीं, आप क्यों हमको चेक चेक किए, कोई भी जा सकता, कुंठा विहित जगत है, अरे सो तो है भाई, आप क्या कुछ बोलने ही नहीं दिए, साफ दे दिया, सिक्योरिटी के इंचार्ज थे दोनों, झगड़ा हो गया सिक्योरिटी साथ, सिक्योरिटी साथ हो हाल बवाल जब हो गया तो अंदर में जब घर वाले वो भी सुने, टेम्पल कमांडर दौड़ के आ जाए गेट पर झगड़ा हुआ, तो टेम्पल कमांडर तब सबसे पहले आ जाएगा, तो आ गए, छोटे छोटे बालक थे सिक्योरिटी से झगड़ा करते हैं, तो भगवान आए, भगवान के घर के मालकिन कौन है, टेम्पल कमांडर लक्ष्मी जी है ना, वैकुंठ के मालकिन, तो वो आई पहले, वहां के देखे छोटे छोटे चार बालक है, छोटे बालक को देखे माता जी के मन को थोड़ा स्नेह आ जाते हैं ममता, तो उनको देखे फिर प्रभु जी की बोले पति देव आ गए, दोनों आके गेट पर गेट से बाहर आकर देखे, देखते ही माता जी पूछने लगी कौन है बालक आकर, हम सिक्योरिटी की तरह झगड़ा हट गया, छोटे बालक देखते हैं कपड़ा भी नहीं पहने, तो भगवान ने वो बालक तो चारों लाल पड़ गए थे गुस्से में, टेम्पर गुस्से में साफ दे करके वो सिक्योरिटी बोलते हैं साफ देखिए हम पूछे केवल भाई कपड़ा नहीं पहने नंगे धड़े, इतने में इतने कोई कागजात आईडी कुछ नहीं, इतने में इतने गुस्से हो गए, छोटे छोटे बालक है हम क्या गलती किए। अब भगवान जब आ गए, मालिक जब घर के आ गए, टेम्पल पेशेंट जब आ गए गेट पर, तो वहीं होने लगा, विचार होने लगा तो वो बालक तो गुस्से में थे, देख रहे थे, अच्छा यही है क्या, यही आपके पास है ना, यही है, उनके मिलने जा रहे थे, देखो तो गेट पर आ गए, वही आ गए, वही भेंट हो गया। भेंट होते ही भगवान ने तुरंत शुरू किए बोलना, बोले हे बालक ब्राह्मणगण मुझे क्षमा कर दो, मैं माफी चाहता हूं आपसे, बारंबार ये मेरे ही व्यक्ति हैं, किसके बोले चौकीदारों को बोले, सिक्योरिटी मेरे सिक्योरिटी, तो उनका दोष मेरा दोष है, मैं ही उनको अपॉइंटमेंट किया था, मेरे ओर से वो काम कर रहे हैं, मेरे ओर से वो देख रेख कर रहे हैं, जो चेकिंग कर रहे हैं मेरे ओर से कर रहे हैं, तो आपको कोई गलती हुआ, कोई आपको अपमान हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरे दास की गलती, प्रभु की गलती माना जाता है, मैंने उनको रखा था, उन बेचार तो काम करने वाले हैं, उनको क्यों डांट रहे हैं, मुझे डांटिए, मेरे ही गलती है, तो मेरे ही आदमी है, भगवान चार बार ऐसा कहे, ये मेरे व्यक्ति है, मुझे माफ कर दीजिए, उनके गलती के कारण मुझे माफ कर दीजिए। और चारों वालों का गर्मी ठंडा पड़ गया, बोलिए भगवान है, वो बार बार कहते जा रहे हैं कि वो मेरे मेरे मेरे, हम लोग उनके है नहीं, उसका मतलब वो सिक्योरिटी को मेरे मेरे कहते जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ के बोले प्रभु ये सिक्योरिटी आपके, हम आपके नहीं ना, आप भी हैं लेकिन वो तो मेरे ही हैं। बोले प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, हम विड्रॉ करना चाहते हैं हमारा अभिशाप, हमको नहीं चाहिए, हमको पता होता था आपके आदमी, हम कभी उनसे झगड़ा नहीं करते, हमको वहीं से मिलकर चले जाते, प्लीज एक्सक्यूज अस, हम माफ कर दीजिए हम अब। बोले नहीं तो हो गया हो गया, अब नहीं मिटा नहीं जा सकता, अभी सब दे दिया, उनको भोगना पड़ेगा। वो दोनों बोले प्रभु हम आपको छोड़कर जाएं, मैं आऊंगा ना आपके साथ, जाओ हमारा चलेगा, हम आएंगे। तो जो भी हो, तो अब गुस्सा आ गया, जन्म सिद्ध ब्रह्मभूत थे लेकिन क्रोध आ गया। ये देखिए एंट्री पॉइंट, कितने ब्रह्मभूत अवस्था, ना सोचती ना कांक्षती, कोई इच्छा ही नहीं था, कोई शोक भी नहीं था, प्रसन्न आत्मा थे, लेकिन क्रोध आया ना, नहीं कैसे क्रोध आ सकता है, यहां आ सकता है, ये कैसे आया, दिस इज आउट ऑफ आवर थिंक, हम सोच अवांग मान से हम सोच नहीं सकते, ये भगवान ने कराएंगे। वो एक गेट के पास आ जाएगा, जहां एंट्री पॉइंट है ना, वहां तो पूरा टेस्ट पक्का हो जाता है, ये टेस्ट हो गया, अब एंट्री नहीं, क्रोध जो करता है अंदर किस पर कुंठा में कैसे जाएगा, कुंठा भी ना जाएगा, मैं जा नहीं सकता, गेट से बाहर वहीं से वापस कर दिए। लेकिन ब्राह्मण ने गुस्से में तमतमा से, छोटे छोटे बालक, भगवान क्या टेक्निक है, अपने पत्नी को साथ में लेकर आए, इतने मधुर वचन कहे, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, बालक के गुस्सा तो शांत वहीं कर दिए, करके वहीं उनको दर्शन दिए, अंदर नहीं लिए ना, ब्राह्मण बालक के घर में आ जाओ, घर में नहीं जा सकता ना, क्वालिफिकेशन रद्द हो गया वहीं पे, जो गुस्सा क्रोध करते हैं वो वैकुंठ में नहीं जा सकते, तो कैसे जाएंगे, तो वैकुंठ नहीं घुसने दिए, वही गेट से विदा करके दर्शन दे करके, शायद अंदर आ जाए, खुद बाहर आ गए, खुद बाहर आकर के अपना दर्शन दे दिए, दे करके अब बोले अब बेचारे बालक है, उनको तो कुछ करना चाहिए ना काम उनके साथ, तो वहीं पे खड़े खड़े बिना टच टचलेस ऑपरेशन किया, क्या किए, छोटे छोटे लक्ष्मी जी बड़े भाव से देख रहे हैं, उन्होंने भी बड़े बिल्कुल शांत हो चुके थे, भगवान ने माला पहने हैं, आपने श्री चरण में तुलसी दल है, ये तुलसी दल का और आपने चरण के जो अपना स्वाभाविक सुगंध है और उसमें तुलसी की सुगंध मिल करके जो गंध चलता था, वो वासना थोड़े दूर में खड़े हैं, जो गंध है वो जाकर के चारों बालक के नाक में प्रवेश किया और उनके नासिका रंध्र हो करके सुगंध जो होता ना, ऐसे कहते ना हम लोग दुनिया में, तो दिल्ली में तो हर सब पोल्यूशन पोल्यूशन है, तो जहां थोड़ा कोई सेंट मिल जाए आपने पूरा ऐसे करेंगे ना, तो इतने बढ़िया सुगंध भगवान के ओरिजिनल अपने स्वाभाविक चरण गंध तुलसी किंजल के से मिश्रित होकर जो निकले, ऐसे सुगंध तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड में इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो उन्होंने इस अभूतपूर्व सुगंध को अनुभव के घ्राण किए, घ्राण की अंदर तक गया और वही हवा के माध्यम से, भगवान उतनी दूर से गेट पर खड़े हैं, वो तो बाहर खड़े हैं गेट के आउटसाइड, ये केवल गंध के माध्यम से नाक की रंध्र के अंदर प्रवेश करके उनके हृदय को जय कर गए, हृदय के अधिपति बन गया वो गंध, भगवान के चरण गंधा इस चारों ब्रह्मभूत बालकों के हृदय को पूरा पूरा अधिकार कर लिया, कुछ भी नहीं रहा, टोटल अधिकार कर लिया, हृदय में कुछ नहीं रहा, बिल्कुल भगवानमय हो गया, केवल गंध मात्र है। नाक से अंदर घुस करके हृदय को पूरा जय कर लिया, जय करके ऐसे हो गया कि बेचारे खड़े खड़े भगत बन गए वहीं पे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ऐसे डिवोटी बने, स्तुति करने लगे। भगवान बोले ठीक है ठीक है, अब जाओ अब प्रैक्टिस करेंगे। तो वहीं से खड़े खड़े डिस्टेंस में भगवान की गंध ग्रहण मात्र से इतने ज्ञान हो गया, भगवत ज्ञान हो गया, हृदय शुद्धि हो गया, तो आकर के भगवान के भजन करने लगे और प्रचार संप्रदाय लगा दिया। बोले आपने हम भी प्रचार, भगवान की वाणी हम प्रचार करेंगे। देखिए भगवान के जो निजजन होते हैं, उनके प्रियजन होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान के प्रचार का भक्त भगवान के निजजन होते हैं। तो आकर प्रचार के संप्रदाय खोल दिए, है ना नहीं? उस संप्रदाय का महामंत्र क्या है, संप्रदाय के प्रवर्तन आचार्य कौन है, कौन आचार्य प्रवर्तन किया उनको, निम्बादित निम्ब अर्क, नीम के पेड़ में सूरज उदय करने वाले आदित्य व अर्क मतलब सूर्य। एक बार उनके घर में ब्राह्मण आए, छोटे बालक थे वो, बालक थे उनके घर में, बोले बोले हम तो भाई शाम हो जाने से नहीं खाते हैं, जब सूरज रहता है तभी खाते हैं, हमारा नियम है हम नहीं खाते, ऐसे नहीं खाएंगे, हम बना लिए माता जी ने बनाया खा लो, नहीं रात हो गया हम नहीं खाएंगे, क्यों, मेरा नियम है जब तो सूरज आसमान में रहता तब आप खाते हैं, तो भाई सूरज देखो ना, रात को 8 बजे उनके घर के सामने नीम का पेड़ था, बोले देखो पेड़ के ऊपर सूरज दिखा दिए, अरे घड़ी में 8:30-9 बजे अभी सूरज ना, अभी खाओ, खाना ही पड़ा, जो सूरज चमक रहा है क्या करें, उनका नियम है, पेड़ के ऊपर सूरज दिखा देकर ब्राह्मण को खिला दिए, तभी से ब्राह्मण मान गए, बोले निम्ब आदित्य निम्ब अर्क, निम्ब के पेड़ में अर्क उदय करने वाले वो बालक थे, वो बालक को कुमार ने आकर के ये पावर दिए थे, चार कुमार ने, बोले बेटा हम तो ऊपर लोक में रहे, उसी धरती पर प्रचार प्रसार करने के लिए आपको हम शक्ति देते हैं, आप करो। तो ही निमार्क ने नीम पड़े उदय करके इतने प्रभावित हो गए, इतने अपने जाने माने हो गए, तो उन्होंने अपने संप्रदाय प्रचार की निमार्क आचार्य। तो उनके जो महामंत्र है वो क्या है, क्या सब नहीं, नहीं, नहीं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, याद रखो हर एक संप्रदाय का महामंत्र याद रखिए, तो प्रवर्तन आचार्य को याद रखिए, याद रहा महामंत्र क्या है, अब वृंदावन अगर जाएंगे ना बहुत चलता है ना, राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। ये कुमार गण ने जो भगवान को वही देखे थे बिल्कुल साक्षात्कार करके भगवत ज्ञान प्राप्त किए थे, उन्होंने संप्रदाय के महामंत्र चलाए, ये कुमार संप्रदाय। अब तीसरा संप्रदाय क्या है, श्री संप्रदाय, श्री कौन है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी तो उनके बेटर हाफ है, उनके उनके सपत्नी अर्धांगिनी है, वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, भाई पत्नी पति को जिस प्रकार जानती है और कोई दूसरा जान सकता है ऐसा, आप बताइए, है ना, सबसे ज्यादा तत्व तो वही जानती होगी ना, प्राइवेटली पब्लिकली जो भी कहो वही सबसे ज्यादा अथराइज्ड जानने वाली हूं। तो लक्ष्मी जी बोले आप लोग जानते हैं, मैं नहीं जानती हूं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगी। अब उनकी अपने एक संप्रदाय खुली, क्योंकि भगवान के जो निजजन होते हैं वही प्रचार करना चाहते हैं, तो बोले हम ही प्रचार करें, आई वॉन्ट टू प्रीच टू। तो उन्होंने प्रचार शुरू किए, आपने मंत्र में प्रचार किए, उनके प्रवर्तन आचार्य कौन बने, धरती पर कौन प्रचार कराया उनके मत को, श्री राम अनुज। राम कौन है, भगवान रमयतीति राम, तो उनके अनुज बन करके, उनके छोटे भाई बन करके भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजे, उन्होंने आकर के प्रचार किए, और उनका महामंत्र क्या है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, बोलिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये है ये संप्रदाय के महामंत्र। आप जब जाएंगे दक्षिण भारत में खूब मिलेंगे आपसे जप करने वाले, ये प्रामाणिक संप्रदाय हुआ। और चौथा कौन है, ब्रह्म माध्व गौड़ी है, तीन नाम है इसमें, एक नहीं है। ये थ्री फेज में चलता, बाकी सब सिंगल फेज में, यही एक ही संप्रदाय जो थ्री फेज में। आप जानते हैं कभी इलेक्ट्रिकल विषय काम होगा, आपको बॉल जलेगा, पंखा चलेगा, लेकिन मोटर चलेगा वो सिंगल फेज में चलेगा? क्या चाहिए? थ्री फेज चाहिए, कमांडर हल्के से जानते हो, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर हम जैसे इतने हद हो चुके हैं, हमको उद्धार करने लिए उठाने के लिए थ्री फेज मोटर चाहिए, सिंगल फेज में काम नहीं चलेगा, ये हाइड्रोलिक चाहिए। तो इसलिए बाकी सारे संप्रदाय तो सिंगल में काम चल जाता है, तो लाइट चलाना, पंखा चलाना, इसे। लेकिन हमारा ये हाल हो चुका है कि हमको तो वो काम ना करे, थ्री फेज चाहिए। तो इसलिए हमारा संप्रदाय जो है भगवान की प्रथम पुत्र, उनके शिष्य, उनके छात्र और उनके काम करने वाले, उनके अंश अवतार भी है वो ब्रह्मा जी है, उनके डायरेक्ट बेटा भी है, बिना पत्नी से बेटा हुआ। हाँ, पत्नी पास में थी लेकिन पता भी नहीं चला कि बेटा हो गया। ऐसे कभी होता है संसार में? पता, पति पत्नी है तो पति को पत्नी को पता ना चला कि बेटा पैदा हो गया, ऐसे कभी हो सकता है? पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल है। ये हमारे संप्रदाय के चमत्कार है, सबसे पहले चमत्कार है, पत्नी होते होते पत्नी को ना पता चला बेटा। हाँ? पहले चमत्कार से शुरू किए स्वयंभू और भगवान के पुत्र हुए, और भले जब बेटा हुआ तो स्कूल कॉलेज से तब था नहीं, फास्ट जीव है, कभी स्कूल कॉलेज तो बना नहीं था, बेटे को तो पढ़ाने का काम किसका होता? पिता का होता है, तो कैसे पढ़ाएंगे? कोई ना मास्टर है, ना कोई खाता है, ना किताब है, ना पेन है, कलम है, कोई टीचर, इंस्ट्यूशन, नथिंग, तो कौन पढ़ाएगा भाई? तो पिताजी पढ़ाएंगे स्वयं। पिताजी पढ़ाने लगे, बोले मुझे टाइम खराब कर, उनके ऐसे पढ़ाऊं कैसे? तब सीधा तेने ब्रह्म हिदाय आदि कवयो मुह्यंती यत सूरयः, देवता वो तो चक्र में आ, बोले कैसे पिताजी अब पढ़े, अब कैसे पढ़ूं, पिताजी ने मुझे पढ़ा दिए, कैसे पढ़ा? डायरेक्ट डाउनलोड किए, आजकल होता ना, डायरेक्ट डाउनलोड किए, कोई वायरलेस सिस्टम, आप तो चिप्स लगाते हैं फिर ऑन करते तब जाकर डाउनलोड होता है ना, कोई चिप्स भी नहीं था, वायर भी नहीं था, ना कोई मशीनरी कंप्यूटर आदि था, कुछ नहीं था। भगवान ने कैसे किया, कहे उन्होंने पंथा डायरेक्ट तेने हृदय, डायरेक्ट इनके हार्ट में डाउनलोड कर दिए नॉलेज सारे, ब्रह्म ज्ञान वैदिक ज्ञान को सीधा उनके हृदय में डाउनलोड कर दिए। ओ आई यू, कोई सिखाना, मड़ाना, लिखना, नथिंग, कुछ नहीं किए, आर्टिस्ट मूवमेंट ऑन द स्पॉट, सारे डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डिलीट सब इन ए सेकेंड, सीधा डायरेक्ट डाउनलोड कर दिए। अब सर्टिफाई करने के लिए जो साक्षात स्वयं सर्टिफाई करे, हो गए, मद अनुग्रहाय भवतु, मेरे अनुग्रह से तेरा सारे हो जाए। अब हमको किसी का बाप के बेजा दे सबसे टॉप मोस्ट हायर अथॉरिटी सर्टिफाइड करते, हो गया उनका सर्टिफाइड। अब जैसे मेरा भाव, जैसे मेरा गुण, मैं जैसे हूं, अब तेरे इस पूर्ण ज्ञान हो जाए, कैसे हो जाए ना, मेरे अनुग्रह से हो जाए बस। ओहो, ऐसा कभी हमको ज्ञान मिल जाए, कहा को एडमिशन करें, इतने फीस भरें, कोचिंग में जाएं, रात दिन करके याद करें, कुछ करें, फिर भी ना होए, क्या प्रोसेस? यही प्रोसेस हमारे पिताजी का है, पिताजी ने क्या होंगे हमारे पिछले समय, दादाजी थोड़ी, कितने पुरुष के ऊपर है भाई, थ्री फेज में तो पूरा संप्रदाय चल रहा है, इसी हिसाब से कितने ऊपर होंगे, है ना? आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, ब्रह्मा जी हमारा किस क्या रिश्ता लगाएंगे? शास्त्र में पितामह करके बोलते हैं, लेकिन पितामह स्क्वायर की क्या क्या उसके ऊपर लगा सकते हैं, कितने, दो तीन चार पांच हजार दस, कितने लगेगा पिता, लेकिन ले दे करके पिता मह, है ना? तो इस स्टेज में आते हैं, तो उनको भगवान ने ऐसे ज्ञान दे दिए, ऐसे पढ़ा, तो उन्होंने बोले कि मैं डायरेक्टली भगवान के स्टूडेंट हूं, भगवान के बेटा हूं, भगवान के शिष्य हूं, मैं ही उनके हूं, और मेरे द्वारा उन्होंने सृष्टि करवाया, तो मैं ही प्रसार में संप्रदाय करूंगा ना। तो हमने ये भौतिक ब्रह्मांड की सृजना किए, सृष्टि करके बोले भाई यहाँ पे जो सृष्टि के जो लोग आ गए वो तो इतने हुड़बक है, उनको पार करने के लिए सिंगल लाइन काम नहीं करेगा, ट्रिपल फेज लगा। तो उन्होंने अपने प्रवर्तन आचार्य किसी को बनाए, माधवाचार्य को। वो माधवाचार्य बोले उन्होंने सिखाते परंपरा में आता है भगवान सिद्धा प्राप्त करो, महान ब्रह्मा से कौन, ब्रह्मा ने किसको ज्ञान दिए, नारद को, नारद ने किसको दिए, व्यास को, होगा ना तीन फेज, उसके बाद माधवाचार्य। माधवाचार्य डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ व्यासदेव, हाँ माधवाचार्य ने गीता कमेंट्री लिखे, व्यासदेव जी ने साइन किया उसका पर, रजिस्टर्ड होके। अब वो माधवाचार्य ने आकर के वहां प्रचार किए इस धरती पर, अपने संप्रदाय लगाए। तो उनका क्या महामंत्र है, चुप हो गए बताओ ये पता नहीं माधवाचार्य की कोई है, उनके क्या मंत्र हंसते हैं, जब तक करते ना नहीं, वो करते नहीं। कोई बोलते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो इस युग का नहीं है, वो शतयुग के थे। माधवाचार्य के इष्टदेव कौन है, नहीं आप लोग सब रुकन कृष्ण को इज नॉट ट्रेंड देन तो पल्ली, आपने संप्रदाय की बात ही नहीं बोलते। माधवाचार्य के इष्टदेव को नहीं जानते तो क्या है, यस कृष्ण है, वो उड़पी में है इसलिए नाम लगा दिया उड़पी के, लेकिन वो उड़पी के थोड़ी थे, वो कहां के हैं, यस द्वारके कवि केवल प्रकट है, किधर के वो, क्या रूप है उनका, कैसे गोपाल, अरे मंथन दंडधारी, जो दधि मंथन के समय में जो माताजी मंथन करे थे पकड़े थे ना, ये लीला कहां का है, ब्रज के हैं, ब्रज के ठाकुर है। नहीं तो कभी कृष्ण मूर्ति आप देखें कि एक दधि मंथन दंड को धारण करे वो रस्सी पकड़े, वो कहां हुआ था लीला, अरे भाई गोकुल में हुआ था, गोकुल में बचपन में माताजी के साथ इंसिडेंट हुआ था ना, जशोदा मैया के साथ, उनके मंथन पकड़ ली थी, सुबह सुबह उठे कि माताजी दधि मंथन कर रहे थे जाके पकड़े, तो ही विग्रह है। नदि मंथन के समय माताजी की मंथन दंड को पकड़ा हुआ जो रूप, वही रूप है माधवाचार्य के इष्ट, वो कहां के है, उड़पी का है ना, द्वारका के, किसका है, गोकुल का है, 100% रूप ही बता रहे, फटो देख कर बता देगा, ये इंसिडेंट और कहीं नहीं हुआ था। द्वारका वाले तो बोले हम थोड़ा जानना चाहते हैं सारे वही पाटन महिष ने, बोले हम सुने बहुत भारी आपके बाल सुलभ में किसी आलमंद था नहीं, फोटो देखा, बोले थोड़ा हम देखना चाहते हैं, इसे करना चाहते, भगवान ने अपने हाथ से बना दिए ये रूप को, इसी रूप से पूरे बाल लीला प्रकट हो गया एक रूप को, तो रुक्मणी आदि इस रूप को लेकर के विग्रह को पूजा करने लगे थे, वो बड़े नाटकीय ढंग से किस प्रकार माधवाचार्य को प्राप्त हुआ था, है ना नहीं। तो इस प्रकार माधवाचार्य ने उन्हीं को पूजा की, उन्हीं को पूजा करते हैं। तो माधव संप्रदाय को कहा गया कि तत्ववादी है, वो जब तब ज्यादा नहीं करते हैं, वो तत्व विचार करते हैं, तत्ववादी है वो लोग, तत्व विचार करते हैं। ये भजन में हम पहले से गाए ना कि हम उनका संग कभी नहीं करेंगे, किनका संग नहीं करेंगे, जो केवल कृष्ण को पूछते हैं वो वही ग्रुप वाले माधव संप्रदाय वाले वो भजन नहीं करते हैं, वो तो अकेले कृष्ण, अरे ब्रजेंद्र कृष्ण अकेले हो ही नहीं सकते हैं, है ना नहीं, कुछ कोई ना कोई तो होंगे, लेकिन वो आप थे बिचारे, उनको रख दिए, आप बिल्कुल एक ही कृष्ण को मानने वाले, इसलिए तत्व विचार करने वाले, तत्व ज्ञानी है। तो इसलिए तो फिर आकर के उनको बोले नहीं इसमें काम थोड़ी पानी ऊपर नहीं जाएगा, यहीं रह जाएंगे तो विचार विचार करते करते। आदि शंकराचार्य भी कहे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, समझ आया ना क्या कहे, रे मूढ़मती गोविंद भजो गोविंद भजो गोविंद भजो, नहीं नहीं रख्यसी विक्रम प्राप्त सन्निहित काले जब मरने का समय आएगा तब समय में ये व्याकरण का सूत्र याद करेगा तब कोई काम में आएगा, नहीं आएगा, गोविंद को भजो मूर्ख। अब आदि शंकराचार्य ने उपदेश दिए, एक बार हम गए थे एक आश्रम में वो हिमाचल में, तो उनके आश्रम में जाकर पहुंचे तो बोले बोले हम बोले भाई देखो बोले आप क्यों जप तप करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हमेशा करते रहते हैं, समुदाय थे, तो बोला भाई आप ही आदिशंकर भी तो ये स्तोत्र में ये तो बोले हैं, आप नहीं समझते आप तो बड़े बड़े विद्वान संस्कृत पढ़े उसका क्या अर्थ होता, बोले आप उसका अर्थ ही समझते क्या, उसका अर्थ ही थोड़ा क्या उसका अर्थ है ना, आदिशंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नहीं नहीं रखे सी संप्रति सन्निहित काले विक्रण करण, कि ये जो करण धातु वाक्य इसको याद करने से नहीं, आप गोविंद भजो किसके लिए कहते, गोविंद भजन करने के लिए सबके लिए कहते, नहीं मूढ़ मत है जो मूर्ख है उनको बोलते, हम मूर्ख थोड़ी है हम पंडित है हम क्यों भजन आप लोग मूर्ख है भजन करते हैं, हम पंडित है हम क्यों भजन, वो तो मूढ़मती बोले मूढ़मती थोड़ी अब क्या कहें, हमारा बोली बन ठीक है भैया पंडित है हम मुड़े हम भजन करें, तो इसलिए भजन करना जो आवश्यकता पड़ा तो भगवान ने फिर माधव से ये गौड़ीय संप्रदाय रचना की, उन्हीं से संप्रदाय से आया फाइन हो करके, तत्व तो है लेकिन तत्व से काम नहीं बनेगा, भजन चाहिए, तो भजन के लिए हमारा जो महामंत्र इस संप्रदाय में क्या हुआ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र दिए ट्रिपल फेज में काम बना, है ना, तो हमारे संप्रदाय है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, भगवान तीसरा बार फिर आए बोले ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने तो भजन नहीं किया, तो इसलिए श्रीमन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु उन्होंने आए इस संप्रदाय के अभिनव आचार्य बन करके, स्वयं आचार्य बन करके आए, आ करके ये आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युग धर्मपालौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, इस जगत को प्रिय करने के लिए करुणावतारी श्रीमन महाप्रभु स्वयं आए, आ करके कहीं नहीं गए, टारगेट लेकर के गए दक्षिण भारत और वहीं उड़पी में जा करके उनको डिफीट करके उनको बोले कि सर्टिफाइड बोले यू आर तत्ववादी, अगर आपको बचना है तो फिर यही प्रोसेस एक्सेप्ट करो, तो इस प्रकार ये चार प्रामाणिक संप्रदाय है, किसी भी संप्रदाय से हमको भगवान को जानना होगा, यही अथराइज्ड है किसी बाकी इधर उधर से जान से नहीं होगा, ठीक इसी प्रकार जो सारे वैदिक शास्त्र है अथराइज्ड सारे जो जानते हैं वो जानकर क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं, जानते हैं मान करके, सर आमनाय वाणी आमनाय मतलब वैदिक शास्त्र का ही निचोड़ है कि उनके पक्ष क्या प्रमाण है, बोलते भाई शक्ति के द्वारा तो शक्तिमान प्राप्त होता है, राधा रानी है क्या शक्ति, भगवान है शक्तिमान, कोई शक्तिमान हो तो शक्ति ही ना हो तो शक्तिमान हो सकता कैसे हो सकता, ये संबंध समझ लीजिए, यही संबंध है, राधा रानी है पूर्ण शक्ति भगवान है पूर्ण शक्तिमान, दोनों दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, केवल शक्ति हो और शक्तिमान ही धारण करने तो कैसे होगा कम भाई, एक क्रूड एग्जांपल मैं बता रहा हूं यदि गिफ्ट नहीं हम लोग मूढ़मती समझेंगे कैसे, जैसे कोई गाड़ी हो और उसका बैटरी हो, इतने बड़े गाड़ी है सारे इंजन फिर सब चकाचक सब सही है बैटरी अगर नहीं है स्टार्ट होगा, चलेगा नहीं ना? मैं गाड़ी चला नहीं, आप लोग जानते हो, होगा नहीं। और बैटरी एक ऐसे कि निलठा ना चल पाता है ना जा पाता है, वो तो एक ही जगह में पड़ा रहेगा, नथिंग है ना। नहीं स्थान और अचड़ोयम सनातन है ना, हमेशा एक जगह पड़े रहेगा, स्थान एक पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, कहीं काम के नहीं है, लेकिन उसी के बिना गाड़ी जो चलने वाला वो चल ही नहीं सकता। उसी को लगा दो वो उसी को लेकर चलेगा, बैटरी को लेकर गाड़ी चलता रहेगा, कहां घूम कर कहां जाएगा, स्टार्टिंग तो वहीं से होगा। बाकी इंजन का एक्सीलेटर पावर जो काम कर, पहले इग्निशन तो बैटरी से होगा। अब वो है शक्ति और शक्तिमान, इतने बड़े शक्तिमान शक्ति के बिना बेकार है, और केवल शक्ति शक्ति के मान के अलावा भी, तो दोनों दोनों के अन्य अन्य। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा, ये दो थोड़ी है, एक है, दुई देहधरी, दो रूप लेकर आए हैं, दो शरीर धारण के, किसी दो शरीर धारण के जो एक ही है, दो शरीर क्यों धारण करना पड़ा ना? रस आस्वादन के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए अकेला कभी हो नहीं सकता, यह सिद्धांत समझ लीजिए। आपको किसी को, एक व्यक्ति को सभी तरह आनंद होना पाना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को हम चुनेंगे, चुनकर छोड़ दें, पूरे दिल्ली जहां तक नजर जाता सारे आपका नाम से दे देंगे, रजिस्टर कर देंगे, लेकिन कोई एक इंसेक्ट भी नहीं रहेगा, कोई जीव नहीं, आप अकेले रहेंगे। बोलेंगे सारे संपत्ति, सारे मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, सब कागजात, दलील जितने, सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन कोई जीव नहीं रहेगा, केवल अकेले रहेंगे। आप जितने इतर डालो, जितने बढ़िया से आपको ड्रेसिंग पंटिंग सेंटिंग करो, जो भी करो आप करो, लेकिन आप अकेले आनंदित जितना हो पाएंगे, आनंद कभी नहीं हो सकता। अरे भाई हम जानते हैं, थोड़े बहुत किस दिन हम बर्थडे पार्टी, किसी भी दिन हम थोड़ा सा कोई अच्छे नए वस्त्र भी पहन लेते हैं, तो वस्त्र पहन कर क्या करते हैं तुरंत, सबसे पहले ऐना के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन अपने आप को देखने से मन नहीं भरता, फिर किसी का सामने होना चाहते हैं, किसी का भी सामने होना चाहते हैं, अगर कोई है ही नहीं, बोले कच्चू गमछा पहन कर हम तो सही था, ये कहा कि पहना उसको, कोई देखता ही नहीं, कोई देखने वाले नहीं हो, क्या मतलब है इसे कपड़ा लता का, इतने बढ़िया सूट शर्ट बनाए कोई देखने वाला ही नहीं है, इतना नंगा है कि हमें सभी तक कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए सारे जो है आनंद प्राप्ति का मूल उद्देश्य क्या है, कोई हमको देखे, ओ आप ऐसे, वाह यही आनंद है। अब कोई दूसरा रहेगा नहीं तो आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आनंद प्राप्ति करने के लिए दो होना मिनिमम, दो से अधिक हो तो और अच्छा है, मिनिमम तो एक दूसरा होना चाहिए, नहीं तो आनंद महसूस ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान स्वयं आनंद घन है, नक्ष सिक्त आनंद से भरा हुआ है, परानंद से भरा हुआ है, लेकिन आनंद को अनुभव करने के लिए कोई दूसरा तो होना चाहिए ना, तब तक कैसे आनंद। तब भगवान ने भक्त को बना, भक्त ही भगवान की प्रशंसा करेंगे, वो दोनों दोनों से अपना चलेगा। पार्टी के लोग तो वही होंगे, कोई पार्टी है उसका पार्टी के कोई लोग नहीं है तो कैसे पार्टी है? तो इसलिए भगवान ने, तो फिर दो होना पड़ा, मैंने अधिक होना पड़ा, बहु श्यामम एक थे, बहु होना पड़ेगा आनंद पाने के लिए। तो इसी के लिए अन्य रस आनंद उपभोग, आनंद में रस को अनुभव करने के लिए भगवान ने दो रूप धारण किए, और जो आनंद प्रदायिनी शक्ति जो मूर्ति मंत्र रूप कर होकर होए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए जो शक्ति अपने रूप लेकर के, मूर्त रूप लेकर के प्रसन्न फाड़े हो जाए, सो कौन है? राधा रानी। इसलिए आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद मतलब आनंद, उत्कृष्ट आनंद, उस आनंद देने के लिए जो शक्ति वो रूप धारण कर ली, तो बन गए श्रीमती राधिके, वही उनका आराधना कर। उनके बारे में अब बहुत ज्यादा व्याख्या करेंगे, इस हमारा ये क्षमता ही नहीं है ना हम कर सकते हैं। कल मुझे टेंपल कमांडर पहुंचे, बोले बोले आपको इसके ऊपर बोलना होगा, मैं बोला दिखाओ, मैं देखा मुझे राम राम राम, मेरे बाप रे बाप, हमको नहीं इसके ऊपर बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे हमारा चैतन्य चरितामृत क्लास से सीरियल चल रहा है, आप कैसे नहीं बोलेंगे? मेरी सीरियल ही चल रहा है, लेकिन कभी कभी टॉपिक इस प्रकार चलना चाहिए कि कौन सा सीरियल में भी किसी को ओमिट करे, किसी को कमिट करे, तो इसको नहीं जाने गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आपको कोई मशीन बाजार से खरीदे उसमें बुकलेट आता है ना, उसमें लिखकर इस मशीन पे उसको नहीं छूना, बाकी सब इसी से पता लगा। इसी प्रकार कोई भी पिता माता हो, आपने ही बालक को, आपने ही जन्म दिए हुए बालक बालिका को, कोई आपने पति पत्नी का आपने जो प्राइवेट अफेयर्स को सिखाते हैं कि बताते हैं, नहीं बताते ना। लेकिन जब वो बालक के बालिका उस उम्र के हो जाते हैं, वो भी पति पत्नी बनने लगते हैं, अपने आप सीख जाते ना, नहीं ठीक। इसी प्रकार वो क्षमता आने से अपने आप जान जाएंगे, उनको बताना जरूरत नहीं पड़ता। यद्यपि वो है लेकिन फिर भी नहीं सिखाते, आपने होकर भी उनको नहीं सिखाना पड़ता, नहीं वो स्थिति आने से सीख जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यद्यपि इसी चैतन्य चरित्र अमृत में ये बात भी है, लेकिन हम उसको अभी सीखना, हमारा जो क्षमता आ जाएगा हम अपने आप सीख जाएंगे। तो इसलिए चैतन्य चरित्र अमृत में आप ये 50 प्यार को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे करके इसी प्यार में ही चैतन्य चरिता में तुम्हें इस बात को लिखा गया। प्यार नंबर 201 सेम बुक में सीसी मध्य 201 में राधा कृष्ण लीला ऐ अति गुढ़तर दास्य वात्सलादि भावे नाहय गोचर। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गुढ़ है, उन्हें दास्य साख्य तथा वात्सल्य रसों के माध्यम से कभी नहीं समझा जा सकता। आ समझ में, उसके बाद में बताते हैं। सवे एक सखी गणेर इहां अधिकार, सखी है ते हय ऐ लीला रा विस्तार। वास्तव में एकमात्र गोपियों का ही यह अधिकार है कि वे इन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करें, और केवल वही इन लीलाओं का विस्तार कर सकती है। हम सब गोपी हो गए क्या, क्यों इसको पढ़ना। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। वही विस्तार करेंगे, वही आस्वादन करेंगे। गोपियों के बिना राधा कृष्ण की इन लीलाओं का संवर्धन नहीं हो सकता, केवल उन्हीं के सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों का आस्वादन भी केवल उन्हीं कर सकते हैं। इतने में समझ में आ गया होगा कि हमारी स्थिति क्या है, तो इसलिए इसको ओमिट करके इस 201 से आगे पढ़ना चाहिए। 150 प्यार से लेकर के 200 तक के 50 प्यार ये हमारे क्लास के लिए नहीं है। अगर करते हैं तो गड़बड़ करते हैं, डेंजर लाइट बटन दबाते हैं आपने, है ना। जब हमारा स्थिति आ जाएगा तब तो फिर आएगा समझ में। ओके, हरे कृष्ण।